om gyan te nanda shunyanan jayan shulake chakshurun mritam ye rasne shiro vayana sri chaitanya mano vishkam sthavidam ye na bhujale swayam rupa kalam ayam vidhati sridhantikam ye shri krishna chaitanya prabhu nityananda shudvai tradhalo shivasadhi kaurva Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कुछ श्लोकों में हमने सुना था कि किस तरह से ये ब्रह्मांड जो है उसका जो काल गणना, हमारी काल गणना और भगवान की काल गणना जो है, काल का जो समय अवधि वो अलग अलग है और इसके कारण हमारा जो लाइफ है वो ब्रह्मा जी के लिए एक फ्लैश जैसा है। हमारा एक साल उनका एक क्षण में बीत जाता है। आप सोचिए कि अगर एक साल एक क्षण में बीतता है तो हमारा एक दिन के लिए ब्रह्मा जी का क्या वैल्यू है। हमारा एक दिन ब्रह्मा जी के लिए सेकंड भी ज्यादा पड़ेगी उसके लिए, फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड्स। और ऐसा ही सिचुएशन है ब्रह्मा जी के लाइफ का भगवान के लिए। भगवान के लिए ऐसे हजारों ब्रह्मा फ्लैश की तरह आते जाते रहते। तो भगवान की काल गणना के अनुसार हमारी काल गणना तो कुछ भी नहीं है उसमें। वेन ब्रह्मा जी का आयुष्य में हमारा जो समय है वो फ्लैश से भी अधिक तेजी से भाग रहा है, तो फिर भगवान की तुलना में हमारा आयुष्य कुछ भी नहीं। ये इसलिए बताया गया है कि हमें इस प्रकृति के, इस संसार से, इस भौतिक जगत से ज्यादा आसक्ति ना हो जाए, इसलिए ये चीज बताई गई है। सीधी सी बात है, आप सोचिए कि हमारी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं। जैसे हमने कीड़े का एग्जांपल दिया था जो मानसून में होता है, तो हम इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं कि नहीं, ये मेरा घर रहेगा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है, मेरा बैंक बैलेंस है, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। इस तरह से हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीजों से आसक्त रहते हैं और जो महत्वपूर्ण कार्य है भगवान का चिंतन करना वो नहीं करते, और इन सब चीजों से आकर्षण रहता है। इसलिए फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम इन सब चीजों से आसक्त हो, तुम्हारा मन इसमें लगा हुआ है, लेकिन ये सारी चीजों का महत्व कितना है, ये फिर भगवान बता रहे। उसका अपना महत्व ही तो कुछ है नहीं, फिर क्यों इसमें लगे हो। इस तरह से भगवद गीता में 8वें अध्याय में, जैसे भगवद गीता के 5 महत्वपूर्ण विषय माने जाते हैं, एक तो है जीव, दूसरा है भगवान, तीसरा है प्रकृति, चौथा है कर्म और पांचवा है काल। तो इस तरह से 5 महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा भगवद गीता में हुई है। तो काल, टाइम, तो काल का अधिकतर डिस्क्रिप्शन इसी चैप्टर में आता है। काल किस तरह से काम करता है अधिकतर इसमें आता है, बाकी कुछ अलग अलग चैप्टर में है। लेकिन 8वें अध्याय में जो सनातन काल है उसका संक्षिप्त में चर्चा हुआ है। काल का प्रभाव प्रकृति भगवान के धाम में नहीं होता, केवल संसार में होता है। काल भगवान के काल जो होता है वो भगवान की एक शक्ति मात्र है, और शक्ति ये काल शक्ति को आध्यात्मिक जगत में स्थान नहीं है। अर्थात आध्यात्मिक जगत में न भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है, सब कुछ वर्तमान में ही चलता है। ये सोचना मुश्किल है, कैन नॉट थिंक, ऐसा कैसे हो सकता है, भूतकाल नहीं होता और भविष्य काल भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हमारे पास तो कोई अनुभव है ही नहीं। हम तो अनेक अनेक जन्मों से इसी तरह से भूत और वर्तमान और भविष्य देखते आए हैं, इसलिए हमें इसका कोई अनुभव ही नहीं है कि भूत वर्तमान और भविष्य क्या होते के बिना कैसे होता है जीवन। यह है भगवान की अचिंत्य शक्ति। लेकिन अगर आप गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ में होते हो तो इस प्रकार का कोई भूत वर्तमान और भविष्य का कोई प्रभाव होता। तो इस तरह से 19 तक भगवान ने हमारा मन को अनासक्त करने के लिए और वैराग्य उत्पन्न करने के लिए इस तरह से भगवान ने ये चीज बताई, काल का महिमा, संसार में काल की जो गणना है उसके विषय में। तो इससे हमारा परिणाम यही होना चाहिए, हमारा फायदा यही होना चाहिए कि हमारा मन जो है वो वस्तु को मूल कारण से समझे, उसको पूर्ण रूप से समझे। हर एक वस्तुओं का जो टेम्पररी अस्तित्व है उसकी सत्यता को समझे। तो थिंग्स टू सी द थिंग्स एज दे आर, इस तरह से हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। अभी ये बात सुनने के बाद कम से कम हम लोग इतना तो विचार कर ही सकते हैं कि मेरा लाइफ जितना मैं इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ मेरे लाइफ को, मेरे आसक्तियों को, मेरे सराउंडिंग को, उतना इम्पोर्टेंस ना देवता दे रहे, ना ब्रह्मा जी दे रहे और भगवान के लिए, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है जितना इम्पोर्टेंस मैं दे रहा हूँ। और जिस चीज का इम्पोर्टेंस भगवान दे रहे हैं, मुझे चिंतन करो, मेरा चिंतन करो, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, जिसका इम्पोर्टेंस भगवान दे रहे हैं उसको ब्रह्मा जी भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, देवताओं भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन मैं इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूं, मैं उसको महत्व नहीं दे रहा हूं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। अभी आगे के श्लोकों में भगवान ये बताते हैं कि दूसरा जो प्रकृति है जहां पर इस काल का प्रभाव नहीं होता उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और कुछ लोग अलग अलग प्रकार के लोग उसको अलग अलग समय पे शरीर त्याग करने से गंतव्य को प्राप्त होते हैं। हालांकि भगवत भक्त जो होते हैं उनके लिए ये नियम लागू नहीं होते। ये संक्षिप्त में आने वाले 8 श्लोकों में बताया, 9 श्लोकों में बताइए, टेक्स्ट नंबर 20।
इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता।
परस्तस्मात् क्या है, परस्तस्मात् भावान्य व्यक्तो व्यक्त सनातन यह सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति। इसका विनाश नहीं होता। कब नहीं होता? जब प्रलय होता है तब इसका विनाश नहीं होता। दूसरी एक प्रकृति है, वो मेरी अपनी प्रकृति है, भगवान अपने धाम का बात बताए कि जब प्रलय होता है तो वैकुंठ को कुछ नहीं होता, गोलोक को कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रलय वहां तक जाता ही नहीं है। ऐसे पृथ्वी के ऊपर भी एक दो स्थान है, इस ब्रह्मांड में भी एक दो स्थान है, जैसे नवद्वीप धाम, वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम। कुछ नहीं होता प्रलय के समय पे, इसको कुछ नहीं होता। अभी आप कहेंगे कि नहीं नहीं नष्ट तो होता ही है, जैसे जगन्नाथपुरी में भी साइक्लोन आया तो हजारों पेड़ गिर गए, हजारों बिलबोर्ड्स गिरे, कहीं लोग मरे भी होंगे, तो नुकसान तो होता ही है, नष्ट तो होता ही है। लेकिन धाम आध्यात्मिक होता है, और जो नुकसान आप बात कर रहे हो भौतिक दृष्टि से है। इसलिए धाम मायापुर, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, इन सबका इसका नाश नहीं होता, जितने भी प्रलय होता है। तो यहां पर भी भगवान ने एक लोकल वैकुंठ प्लैनेट बनाया है, ब्रह्मांड के इनसाइड ब्रह्मांड, दैट इज अ लोकल वैकुंठ प्लैनेट। ऑफ कोर्स हम इसको डिटेल नहीं करते, लेकिन जो यहां पर भगवान स्वयं रहते द्वारपाल के रूप में, वामन देव, जो बड़ी महाराज को एक ग्रह दिया गया है, तो इसलिए कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर प्रलय का असर नहीं होता। ये तो ब्रह्मांड के भीतर की बात हो रही है, तो ब्रह्मांड के बाहर भगवान के धाम में तो इसका कोई असर ही नहीं है। अनमैनिफेस्टेड नेचर। तो भगवान का जो लोक है वो सनातन है, और ये दोनों भगवान का मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्टेड जो है, अनमैनिफेस्टेड मैटर, मैनिफेस्टेड मैटर, दोनों से पर है, वो सुप्रीम है और उसका प्रलय नहीं होता, अर्थात वो सनातन है, उसका नाश नहीं होता। आगे वाले श्लोक में पढ़िए।
जिससे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं वो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है।
हाँ, यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जिसको अव्यक्त बोलते हैं वेदांती, और जो परम धाम माना गया है, और हैविंग अटेन नो वन रिटर्न्स, जो वापस नहीं आना पड़ता उधर, अर्थात बाकी सारे स्थानों में जाकर के वापिस आना पड़ता है। ये ऐसा एक ही स्थान है, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, जहां पर जाकर के वापिस नहीं आ सकते। हितगत्व न निवर्तन्ते तद् धामा। और ये परम गति है, परम गति का अर्थ होता है इससे बढ़कर कुछ और कोई लोक नहीं है, और कोई स्थान नहीं है। सो भौतिक सृष्टि में क्या देखा जाता है, भूतवा भूतवा प्रलीयते, समय समय पर उसका नाश हो जाता है। और यहां पर आध्यात्मिक विश्व में उसको प्रलय छू भी नहीं सकता, वो भगवान का अपना धाम है। और यहां पर अव्यक्त शब्द का अर्थ ये नहीं होता कि वो उसका कोई स्वरूप आकार कुछ नहीं है और निराकार है, और वो उसमें जाकर के हम विलीन हो जाए। अव्यक्त शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है मटीरियली अनमैनिफेस्टेड, अर्थात भौतिक दृष्टि से अप्रकट। भौतिक दृष्टि से जिसको देख नहीं सकते, ऐसा भगवान का धाम। कैसा है भगवान का धाम, क्या वर्णन है मैं? शिव कांता कांता परम पुरुष कल्पतरु। जहाँ पर वहां के जितने भी वृक्ष है वो सब कल्पतरु है भगवान के धाम। कल्पतरु, आप वो पेड़ के नीचे बैठे हो और आप कुछ भी इच्छा करते हो वो पूरी हो जा रही है। सोच समझ के इच्छा करना बनता है, कुछ भी इच्छा करते हैं। आप सोचते हो मुझे एक बाउल भर के एक बाउल पूरा स्वीट राइस चाहिए खाने के लिए, तुरंत वो आपको स्वीट राइस दे दे तुरंत। कुछ भी इच्छा आप कोई भी मन में इच्छा करो आपको पूरी हो जाती है। कल्प वृक्ष है ना, भगवान वैष्णव को भी कल्प वृक्ष बोला जाता है। अर्थात अगर आप वैष्णव के पास कोई इच्छा लेकर के जाते हो, अगर वो इच्छा आपके आध्यात्मिक विकास के मार्ग में बाधा नहीं होती तो वैष्णव उसको पूरी कर देते। अगर उसमें वैष्णव का नुकसान भी हो रहा है फिर भी पूरी कर देते, क्योंकि वो कल्प वृक्ष है। सो श्री का द्रुमा कल्प वृक्ष द्रुमा भूमिस चिंतामणि, और वहां की जो भूमि है वो टचस्टोन है, चिंतामणि से बनी हुई है। हमारे जैसा जड़ पदार्थ नहीं है, टचस्टोन है, गोल्ड गोल्ड टचस्टोन जो चमकने वाली चिंतामणि है, ऐसी दिखती है जिसको छूने से अधिक वस्तु सोना बन जाता है। ऐसा चिंतामणि से बना हुआ भूमि है वहां की भूमि। चिंतामणि गण नहीं और तोयम अमृतम, जल जो है वहां पर वो अमृत है, अमृत से बना हुआ जल, साधारण जल कोई पीते ही नहीं है उधर। कथा गानम, और जो बात करते हैं वो नॉर्मल बात नहीं करते, वो कविता के रूप में बात करते। जब भी बात होती है तो पोएम बोलते हैं, एक दूसरे से बात करने में पोएम का उपयोग करते हैं। इस तरह से वहां भगवान के धाम में बात किया जाता है। जैसे श्रीमद् भागवतम में जो श्लोक है सारे पोएम जैसे है, जयति तेधिकम जन्म नाव गोपी गीत है, तो ये पोएम के रूप में लेकिन बात कर रहे हैं। कथा गानम नाट्यम गमनम अपि, और वहां पर कोई तो वहां के लोग जो चलते हैं तो चलने चलने देखने वाले लोग को लगता है कि वो नृत्य कर रहे हैं। ऐसा आर्टिस्टिक वे में चलते हैं, जैसे ऐसा लगा है कि वो डांस कर रहे हैं। ऐसे उनके हर एक स्टेप जैसे कोई नर्तक नर्तक होता है डांस, तो ऐसे वो कैसे पूरा आर्टिस्टिक वे से चलते हैं, उसी तरह के वहां के लोग चलते हैं भगवान के धाम में। कथा गानम नाट्यम गम भी वंशी प्रिय सखी, और वहां पर भगवान का जो वंशी है फ्लूट वो सबका सबसे फेवरेट फ्रेंड है, क्योंकि उसको और फ्लूट को लेकर के हर एक व्यक्ति पागल है भगवान के धाम में। ये वृंदावन की बात हो रही है। वंशी प्रिय सचिदानंद ज्योति पर स्वाद, इस तरह से बहुत वर्णन है। हजारों गोपियां भगवान की सेवा कर रही है, वहां पर कई ऐसे हाई प्लेटफॉर्म आसन है, मंच है जहां पर आप बैठ सकते हो। कहीं क्या बोलेंगे उसको, छोटे छोटे ग्रूव्स बनाए हुए, छोटे छोटे गार्डन के कुछ झरूखे बनाए हैं, वहां पर आप बैठ सकते हो अलग अलग स्थानों में। फिर छोटे छोटे कमरे होते हैं वो फूलों से बनाए भगवान के धाम में, और कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं उसके नीचे उसका पूरा मणि होते हैं ज्वेल्स, तो उसकी लाइट ऐसी होती है कि वो लाइट वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वो लाइट से पूरा वृक्ष कलरफुल दिखता है। और वहां पर वो पत्थर इतने चमकीले होते हैं कि वहां पर एक्चुअली पानी होता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां पूरा पानी भरा हुआ है और पानी के अंदर लाइट्स ऑन है, जैसे आजकल मटेरियल पीपल करते हैं ना एम्बियंट क्रिएट करने के लिए, तो ये सब भगवान के धाम से आता है, लेकिन वहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप प्रकट हो गया। लेकिन कुछ पेड़ के नीचे लाल कलर का पत्थर होता है, रेड कलर का रूबी बोलते क्या बोलते उसको, रेड कलर को फिर ब्लू कलर को क्या बोलते, ऐसे कुछ स्पेशल पत्थर होते हैं, नीलम से बना होता, फिर ग्रीन कलर का होता है रूबी, ग्रीन कलर का होता है, फिर गोल्डन होता है गोल्डन। तो इस तरह से इसका तो बहुत बड़ा वर्णन है इस धाम का, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा आइडिया दे रहा था कि किस तरह से भगवान का ये धाम, और वहां पर सभी ऋतु एक साथ काम करती है, सभी ऋतु, कितनी ऋतु होती है, और सारी के सारी ऋतु एक साथ प्रकट होती है। मुख्य छह सीजन है, लेकिन अगर उसका संधि काल भी
तीन है,
उसके छह है,
दो दो भेद
है, हाँ तीन के दो दो भेद। तो अगर छह सीजन को देखा जाए वो तो बहुत सरल है, जानते हो नाम तो पता होगा, छह मुख्य सीजन कौन सी है, नहीं होता,
ग्रीष्म से शुरू होता है,
स्प्रिंग चौथा हुआ, फिर
ग्रीष्म वर्षा शरद शीत हेमंत शरत ऋतु राजो वसंत,
यस
शरद ऋतु तो ग्रीष्म।
अच्छे छह एक एक करके बताओ तो सब लिख पाए,
ग्रीष्म होते गर्मी, फिर वर्षा, फिर शरद ऋतु, फिर शिशिर, फिर हेमंत, फिर वसंत,
दूसरा गर्मी, फिर शरद, शरद जो अक्टूबर में होता है, शरद पूर्णिमा होती है ना,
फिर शिशिर, फिर हेमंत, फिर शिशिर,
शिशिर ठंडा होता है,
सबसे ज्यादा
हेमंत,
हेमंत,
शिशिर,
शिशिर,
वसंत,
फिर
ग्रीष्म, छह हो गया, ये छह ऋतु है, इसमें से शरद वसंत और ये पर्टिकुलर ये दो सीजन है, शरद ऋतु और वसंत ऋतु, ये दोनों सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, छह में से सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं शरद और वसंत को, इसलिए भगवान ने शरद में रासलीला किया और वसंत में रासलीला किया, ये दोनों ऋतुओं में रासलीला किया भगवान ने, क्योंकि ये ऐसा सीजन है जिसमें गर्मी भी कम होता है, ठंडी भी कम होता है और बारिश नहीं होती, तो बड़ा अच्छा सीजन माना जाता है। वसंत होता है मार्च के आसपास, फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च, और शरद होता है अक्टूबर नवंबर के आसपास। सो मैं भगवान के धाम का वर्णन संक्षेप में बता रहा था आपको, लेकिन इस धाम को कैसे पाया जाता है, हाउ टू अटेन इट, वो नेक्स्ट श्लोक में है।
मुझे एक ख्याल आ रहा था,
हाँ पूछिए,
जो काव्य शास्त्र में कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मतलब अगर कोई रसदार वाक्य है तो उसको काव्य कहा जाता है, तो हो सकता है वो काव्य का मतलब हो कि सब बड़े ही सुसंस्कृत और शब्दों का सामंजस्य करके और एक ऐसा वाक्य एक दूसरे से कहते हूँ जो
सुनने में काव्य लगेगा।
और इसी तरह से नाट्य की बात जो कहते हैं कि रिदमिक, मतलब जो रिदमिक पीरियडिकल एंड सिक्वेंशियल एंड ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट जो है वो नाट्य कहा जाता है, तो ये गाने के बजाय उनका वाक्य रसात्मकम काव्यम होगा, हो सकता है, क्योंकि शास्त्र में ये दो चीजें बताई,
जैसे मैंने बताया कि श्लोक बताया जयताम जयति कम या बिता कथामृत जैसे कुछ श्लोक है, तो एक्चुअली वो बातचीत हो रही है, वो बातचीत हो रही है, लेकिन गोपी गीत का एक स्पेसिफिक लक्षण है कि उसके गोपी गीत का हर एक पहला अल्फाबेट और सातवां अल्फाबेट सेम होगा, पूरे गीत में
विशेष तरह का छंद है।
यस,
विशेष तरह का छंद।
देखो तव कथामृतम, त से शुरू हुआ तो नेक्स्ट भी त से शुरू होगा, तप्त जीवनम। कवि विरीतम कल्मषाप, क से शुरू होता है। तो हरेक सातवां जो अल्फाबेट होगा वो सेम होगा। दिस इज पोएटिक।
उपजाति छंद।
हाँ,
उपजाति छंद।
उपजाति छंद। आई एम नॉट सो एक्सपर्ट इन ग्रामर, बट
मैं अपने गुरु जी से पूछा।
अच्छा,
संस्कृत के गुरु जी।
तो दिस इज पोएटिक। In this way, it is poetic. How to attain this abode? Text number 22.
भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि ये अपने धाम में विराजमान है रहते हैं, तो भी ये सर्वव्यापी है और उन्होंने सब कुछ स्थित है।
फिर से अनन्य शब्द आया। 22 नंबर पढ़ा आपने, श्लोक पढ़िए।
पुरुषा स परा पार्थ भक्त्या लब्ध्यस्पनन्यया यस्यान्तास्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्।
अनन्य शब्द मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि अनेक बार इस श्लोक इस चैप्टर में उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर फिर से भगवान ने कहा कि अनन्य भक्ति के माध्यम से ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि कर्म से इसको मिल सकता है, ज्ञानी भी इसको प्राप्त कर सकते, या फिर योगी भी थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो उसको मिल सकता है। ऐसा कहीं भगवान ने ऐसा क्लियर किया ही नहीं है। जहां पर भगवान ने अपने परम धाम की बात की है तो वहां पर अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यही अनन्य भक्ति का भक्ति रसामृत सिंधु में आगे वर्णन आता है। जो आपका थर्ड मॉड्यूल होगा उसमें भक्ति का साइंस सिखाया जाएगा। और यही अनन्य भक्ति वास्तव में आचार्य परंपरा के माध्यम से ही हमें सीख सकते हैं, और यही अनन्य भक्ति आध्यात्मिक गुरु की कृपा से ही सीख सकते हैं, और किसी की कृपा से नहीं हो सकते। यद्यपि भगवान यहाँ पर इस धाम में विराजमान है लेकिन वो सब जगह व्याप्त है। हम लोग कहते हैं कि ज्ञान कर्म योग से इस धाम को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में असलियत यह है कि ज्ञान कर्म और योग इस धाम को प्राप्त करने नहीं देते। इज नॉट दैट दैट बाय यूजिंग दैट यू कैन नॉट गो, बट इफ यू यूज दैट यू कैन नॉट गो, ये ऑब्स्टेकल बन जाते। ज्ञान कर्म और योग ये वास्तव में भगवान के इस धाम को प्राप्त करने में बाधा बनते हैं। सो अभी अंतिम जो 6 श्लोक है उसमें भगवान किस तरह से समय शरीर को त्याग करने से आध्यात्मिक जो सफलता है उसको प्राप्त किया जा सकता है। पढ़िए टेक्स्ट नंबर
23। अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है।
हाँ, तो अभी आने वाले एक्चुअली 4 श्लोक में ज्ञान योगी, कर्म योगी और अष्टांग योगी के विषय में बताया है, और 27 और 28 जो है वो भक्तों के लिए बताया गया है। सो टेक्स्ट नंबर 24 में ज्ञान योगी का बात है। पढ़िए।
जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं।
प्रभुपाद राइट्स, व्हेन फायर लाइट,
जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इस सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। कृष्ण कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग
करें। यहाँ पर ब्रह्मविदो शब्द का महत्व है, क्योंकि ये जो बताया इस श्लोक में, जिसमें ब्रह्म शब्द या ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने का बात दिया गया, अर्थात वो लोग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, इसका अर्थ होता है मुक्ति प्राप्त करते हैं, मुक्ति मिलती है उनको। कौन से लोग? जो इस पर्टिकुलर समय में शरीर छोड़ते, जनरली ज्ञानियों के विषय में बताया गया है, क्योंकि ज्ञानी ब्रह्म का उपासना करते हैं, ज्ञान योगी। उत्तरायण शब्द का अर्थ होता है सूर्य जब उत्तर दिशा में होता है, वो उत्तरायण का समय होता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भीष्म देव ने उत्तरायण का वेट किया था शरीर छोड़ने के लिए, कुछ लोग कहते हैं ऐसे कि उत्तरायण का वेट किया था। अगर एक दृष्टि से वो वास्तव भी है कि उत्तरायण का वेट किया था, लेकिन वास्तव में जहां पर उत्तरायण शब्द का उपयोग हुआ है वहां पर उत्तरायण का वेट किया भीष्म ने, इसका अर्थ होता है उन्होंने कृष्ण का वेट किया था शरीर छोड़ने के लिए, क्योंकि उत्तरायण शब्द का एक अर्थ कृष्ण होता है, उत्तरा से जुड़ा हुआ शब्द है। उत्तरा का रक्षा करने वाला कौन था? कृष्ण, जो सुदर्शन चक्र भगवान ने भेजा था, उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया था, इसलिए उनका नाम उत्तरायण हुआ कृष्ण का, और इसलिए उत्तरायण का वेट किया था कृष्ण ने, भीष्म ने, अर्थात भीष्म चाहते थे कि कृष्ण उनके सामने उपस्थित रहे और उनके सामने उनको देखते हुए उस शरीर को त्याग करें। सो ये स्टेप बाय स्टेप होता है ब्रह्मवादियों का। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से शरीर छोड़ता है तो उसको अग्निदेव को समर्पित किया जाता है। अभी अग्निदेव उस जीवात्मा को लेकर के कुछ स्थान तक जाते हैं, फिर नेक्स्ट जो आगे का देवता होता है उसको हैंड ओवर कर देते हैं उस जीवात्मा को, फिर वो देवता आगे के देवता को हैंड ओवर करते हैं, और फिर वो इस तरह से धीरे धीरे ब्रह्मलोक तक या ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट श्लोक पढ़िए।
जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वो चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है।
हाँ, तो यहाँ पर ये अधिकतर कर्मकांडी जो लोग हैं उनके लिए ये श्लोक लागू होता है। इसमें प्रभुपाद इसी चैप्टर के 3rd श्लोक में एक जगह लिखा था, इन द प्रोसेस ऑफ सैक्रीफाइस द लिविंग एंटिटी मेक स्पेसिफिक सैक्रीफाइस टू अटेन स्पेसिफिक हेवनली प्लैनेट्स एंड कॉन्सिक्वेंटली रिचेस देम। यज्ञ करके मनुष्य एक विशेष लोक में या स्वर्ग आदि जगह पर पहुंचता है, यज्ञ का बहुत पुण्य कर्म मिलता है उसको, बहुत सारे पुण्य इकट्ठे होते हैं तो फिर उसको स्वर्ग में जाने को प्राप्त होता है। फिर वो वहां पर स्वर्ग में जैसे उसका मेरिट खत्म हो जाता है, उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, क्षीण पुण्य मर्द लोकम शांति, तो वो पुण्य क्षीण हो जाता है, तो वो जीवात्मा वर्षा के माध्यम से भूमि पे गिरता है, इधर वर्षा के माध्यम से, और फिर वो वर्षा जाते है खेतों में, फिर उससे अन्न उत्पन्न होता है, अलग अलग पौधे उत्पन्न होते हैं, फिर उसको अलग अलग योनि के लोग खाते हैं, और जो अलग अलग योनि के लोग खाते हैं उनके शरीर में वीर्य का रूप धारण करता है, और फिर उस माता के गर्भ से उसका जन्म होता है उस पर्टिकुलर योनि में। कहां से आया था ये? स्वर्ग में से आया था, स्वर्ग से गिरा बारिश के रूप में, और फिर बारिश में गिरने के बाद फिर किसी ने उसको गधे ने खाया, कुत्ते ने खाया, मनुष्य ने खाया, या फिर समुद्र में फेंक दिया उसको। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग योनियों को अपने कर्म के अनुसार उसको प्राप्त करते हैं, और कई बार उसको फिर से जन्म भी लेना पड़ता है बार बार, क्योंकि तो ये साइकिल चलता रहता है। नर्क से कैसे आते हैं? नर्क से सेम टेकिंग बर्थ। यहाँ पर तो जो वर्णन किया गया वो कर्मकांडी व्यक्ति अगर शरीर त्याग करता है ये दक्षिण आयन में, तो उसको क्या गति प्राप्त होती है इसका वर्णन है। नरक से आने का यहाँ शास्त्र में ऐसा कोई क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं है कि नरक से कैसे आता है, लेकिन उसको फेंका जाता है। उसका एक जगह डिस्क्रिप्शन है ऐसा, जैसे समझ लो कि आपके पास 10 कर्म है, 10 कर्म, तो 10 कर्म में से 4 कर्म ऐसे थे, एग्जाम्पल दे रहे, 4 कर्म ऐसे थे इसके लिए आपको नर्क भुगतना ही पड़ेगा, नो चांस, कोई और कोई चारा है ही नहीं, तो पहले आपको नरक में भेजा जाएगा। तो अभी 6 बचे, और अब ये जो 6 बचे हैं उसमें से 3 ऐसे हैं कि जिसमें आपको छिपकली बनना पड़ेगा, या आपको कॉकरोच बनना पड़ेगा, ऐसा कुछ बनना पड़ेगा। तो पहले आपको वो 3 साफाया किया जाता है। अभी और 3 बचे जिसमें से 2 ऐसे होगा कि आपको पहले ट्राइबल बॉडी में जन्म मिलेगा, अफ्रीका के किसी जंगल में, वहां पर उसको जन्म मिलेगा, तो वो 2 वहां पर खत्म किया गया। और उसके बाद फिर 1 बचा था, उसमें आपको 1 पाकिस्तान में या भारत में कहीं पर मनुष्य के रूप में जन्म मिला, लेकिन वो 1 जो बचा वो आपको थ्रू आउट द लाइफ कुछ ना कुछ इसका परिणाम मिलता रहेगा। और इस पर्टिकुलर भोगटने के दौरान जितने भी कर्म आपने नए जनरेट किए उसका हिसाब बाकी वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये संक्षेप में इस तरह से उदाहरण के रूप में आपको बताया कि इस तरह से व्यक्ति पहले नरक में जाता है, फिर उससे नरक से आता है इधर, तो उसको सबसे हीन योनि प्राप्त होती है, क्योंकि वो नरक का कोटा जो होता है वो कंटिन्यू होता है आगे, लेकिन वो पृथ्वी लोक में होता है, और फिर धीरे 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 उसकी उत्क्रांति होती है मनुष्य के शरीर।
इसका मतलब कि जो पाप कर्म के फल है वो नरक में भी भुगतने पड़ते हैं और यहाँ भी भुगतने पड़ते हैं, 2 साइड भुगतने पड़ते हैं,
बहुत ज्यादा हैवी होता है उसको नरक पे जाना पड़ता है।
मतलब लाइट कोटा इधर है, हैवी कोटा वहाँ, कोटा तो
है। देखो जैसे पुलिस तो पकड़ती है ना, थोड़ा बहुत भुगता देती है, जज उसको पनिशमेंट देता है, क्या के नाम में होगा, थोड़ा पहले हो गया तो भी थोड़ा बाद में जजमेंट से बाकी।
ये जो अपने दक्षिण आयन और कर्मकांड ये समझ में आता है, और जो असफल योगी हेवनित स्वर्ग में जाते हैं, फिर उसके बाद वैष्णव या सुखी राम श्री मचांगे हैं, तो वो डायरेक्टली स्वर्ग लोक को प्राप्त करके जब उनका क्षुण्य पुण्य मरते हैं
वो बारिश में नहीं आते।
हाँ वही, वो डायरेक्ट ह्यूमन बर्थ लेते हैं।
यस, ऐसा नहीं है कि जो स्वर्ग में जाता है सबको बारिश में आना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तात्पर्य ये है कि जो कर्मकांड की विधियों को फॉलो करता है और इस तरह से उत्तरायण दक्षिणायन में जिसका मृत्यु होता है उसके विषय में स्पेसिफिक रूप से प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन वो जो भक्त है उसको सीधा जन्म मिलता है, क्योंकि ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है कि यही एक सिस्टम है और कोई सिस्टम ही नहीं है, ऐसा नहीं है।
भगवद गीता में जो उल्लेख है जो भक्ति करता है और बीच में अगर अटक गया, उसकी भक्ति बंद हो गई, तो उसका पतन नहीं होता है कि नेक्स्ट बर्थ के अंदर उसको श्रीमंत के वहां या कोई भक्त के घर पे जन्म मिलता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ है अगर प्रचार करना है
नहीं,
मतलब कि वहाँ पॉजिटिविटी भक्त मिलेगी ज्यादा है, ये जो दो जगह पे बताइए।
यस ज्यादा है, लेकिन श्रीमंत घरों में प्रभुपाद खुद बताते हैं कि उसमें एक रिस्क रहता है, क्योंकि ये श्रीमंत लोग अपनी ऐश्वर्य से इस तरह से अंध हो जाते हैं कि उन लोग को कृष्ण भक्त की बात सुनने में भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए वैष्णव जो होते हैं वो सबको प्रचार का होता, क्योंकि उनके लिए ना श्रीमंत है ना पुअर, क्योंकि उसके दृष्टि से हर एक व्यक्ति अज्ञानी है। कभी किसको उद्धार करना, किसको उद्धार किस तरह से करना, इसलिए भगवान के भक्त डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते प्रचार करने के समय पे। और साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम केवल योग भ्रष्ट कोई प्रीचिंग करे, हम तो सबसे अज्ञानी है उसको प्रीचिंग करने से अधिक फायदा है, क्योंकि अधिक कृपा प्राप्त होगी भगवान की, क्योंकि ये तो वो तो योग भ्रष्ट था तो तुमने थोड़ा धक्का लगा दिया गाड़ी चलना शुरू हो गई, लेकिन इसका तो मेरा गाड़ी पंक्चर था।
लेकिन ज्यादातर प्रभु जी सब लोगों की कोशिश तो ऐसी ही है कि थोड़ा धक्का लगाने से अगर हो जाता है, वैसे कोई पकड़ने की कोशिश अभी किए जा रही होती है, नॉर्मली ऐसा ही देखा जाता है,
क्योंकि उनको प्रचार करना आता नहीं है या उनको प्रचार करने की वृत्ति नहीं है, या तो फिर उनको रेडीमेड प्लेट का क्रेडिट लेना है, क्योंकि प्रचार किया है अभी प्रेम विलास प्रभु किसी को प्रचार करे और वो भक्त बनने के बाद उस पर मेड इन चाइना मेड इन प्रेम मेड बाय प्रेम विलास के बदले मेड बाय मी तो क्रेडिट मिलने है, तो क्रेडिट वाली भावना के कारण इस प्रकार का सोचते। लेकिन वास्तविक प्रचारक जो होता है वो ऐसी तुच्छहीन भावनाओं से ग्रस्त नहीं होता। वास्तविक प्रचारक जो होता है वो उसके लिए सारे व्यक्ति एक समान होते हैं और उन सबको सबको भक्त बनाना चाहता है, सबको वैष्णव कृष्ण लाभ देना चाहता है, इस प्रकार का भावना होना चाहिए। यस
प्रभु जी, यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक शुक्ल यजुर्वेदी है या कृष्ण यजुर्वेदी है, दो शाखाएं हैं, तो ये दोनों शाखाएं जो यजुर्वेद का मतलब ही यज्ञ के बारे में करना, तो क्या ये दोनों जो पंत है धूम्र मार्ग और प्रकाश मार्ग, इन दोनों से संबंधित हो सकते हैं?
प्रभुपाद अधिकतर केस में प्रभुपाद यहाँ पर जो बताया है वो कर्मकांडियों के लेकर के कर्मकांडी जनरली जो यज्ञ यागादि जो करते हैं वो अधिकतर लोग कर्मकांडी होते हैं।
यजुर्वेद में क्योंकि कर्मकांड का एक है,
हाँ वही मैं बता रहा
हूँ, हो सकता है ये शुक्ल यजुर्वेद उधर वाले बात का हो और कृष्ण यजुर्वेद सर की तरफ वाले
हो सकता है, लेकिन जहाँ पर ब्रह्म विदो शब्द का उपयोग हुआ है तो वो ब्रह्म के उपासक लोग है और वो लोग अधिकतर यज्ञ यागादि में पढ़ते नहीं है और वो लोग सीधा ज्ञान मार्ग का उपयोग करते हैं और इस तरह से ब्रह्म की प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं। सो ये दो श्लोकों में भगवान ने कर्मकांडी और ज्ञानकांडी, तो ज्ञानकांडी को मुक्ति मिल सकती है ब्रह्म में विलीन होने से, उसको नहीं आना पड़ता, और कर्मकांडी को वापस आना पड़ता है। सो टेक्स्ट नंबर 26 पढ़िए।
वैदिक मतानुसार आ जगत मधी धारण करवाना बे मार्ग छे, एक प्रकाश नो शुक्ल पक्ष ने बीजो अंधकार नो कृष्ण पक्ष, जयरे मनुष्य प्रकाश में प्रयाण करे छे त्यारे ते पाछो आवतो नथी, पण जयरे मनुष्य अंधकार में प्रयाण करे छे त्यारे ते पाछो आवे छे।
यो आगे वाले दोनों श्लोकों का ये समरी था। सो नेक्स्ट श्लोक पढ़िए।
हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो।
तो कोई व्यक्ति अगर सोचने लगे, अगर अर्जुन भी ऐसा सोचने लगे कि अच्छा तो अभी मरने के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा कि उत्तर आयन में मरूं या दक्षिण आयन में मरूं, तो इसका अर्थ है कि ये युद्ध जो होना है वो युद्ध कम से कम उत्तरायण तक तो मुझे जीवित रहना पड़ेगा, जब तक तब तक मैं वीरगति को प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। तो इस तरह से कुछ न कुछ अर्जुन सोचे, उससे पहले ही भगवान ने अर्जुन को कह दिया कि तुम इससे परेशान मत होना, भक्तों को ये सारे नियम लागू नहीं होते, वैष्णव को ये सब नियम लागू नहीं होते। ये नहीं देखा जाता कि दक्षिणायन में भक्त गुजर गया है या उत्तरायण में गुजर गए, ये सारे नियम उनके लिए नहीं है। और सच में बताए तो भक्तों को इस प्रकार के कर्मकांड में कोई रुचि भी नहीं होती है और ज्ञान कांड में कोई रुचि भी नहीं होती। कर्मकांड जनरली अपनी इच्छा को पूरी करने का ही धंधा करे, उनका और कुछ काम नहीं है। ईट ड्रिंक बी मैरी एंड एट लास्ट डाई, यही काम है उनका और कुछ है नहीं। लेकिन भक्तों को इससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, भक्त कभी परेशान नहीं होते। और इसलिए प्रभुपाद इसके तात्पर्य में युक्त वैराग्य का बात बताते हैं। युक्त वैराग्य का अर्थ होता है कि भक्त लोग क्या करते हैं, अपने जितना भी उसके आसपास में जो कुछ भी उसके पास है अपनी सारी सब चीजों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, उसको युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का अर्थ होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रिकॉर्डर है, ये रिकॉर्डर मटेरियल वस्तु है, टेक्नोलॉजी का एक अंश है, लेकिन उसका उपयोग लोग अलग अलग रूप से कर सकते हैं, उसको सुनने के लिए, कुछ नॉनसेंस गाने सुनने के लिए, एनीथिंग। लेकिन इसको युक्त वैराग्य का अर्थ होता है इसको उपयोग किया जाए भगवान के सेवा में, इसको भगवान के महिमा को रिकॉर्ड करने में या भगवान के कीर्तन को रिकॉर्ड करने में, दैट इज युक्त वैराग्य। लेकिन भक्त युक्त वैराग्य शब्द का दुरुपयोग भी नहीं करता है, अर्थात काम होता है अपने लिए, नाम होता है भगवान का और बोला जाता है युक्त वैराग्य। तो इस प्रकार आप समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ, तो इस तरह से इसका दुरुपयोग नहीं करते भक्त लोग,
शास्त्र सम्मत और परंपरा से
हो, हाँ उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। आप कुछ भी करो क्योंकि आप तिलक लगाए हुए हैं, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, माला का जप करते हो, इसलिए आप कुछ भी करो वो सारा युक्त वैराग्य माना जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका चेतना महत्वपूर्ण है, आप क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो, ये सब महत्वपूर्ण है। ओके लास्ट श्लोक,
कुछ भी हाथ स्वीकार करता है वो बिना अध्ययन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने फलों से वंचित नहीं होता, वह मात्र भक्ति संपन्न करने करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है।
हाँ तो भगवान यहाँ पर ये महिमा बता रहे भक्त का, क्योंकि वो सिंपली बाय परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस, केवल डिवोशनल सर्विस का पालन करके वो सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करता है और अंत में परम धाम को प्राप्त। छठे अध्याय में भगवान ने कहा था ना, सभी ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है, कर्मी से योगी श्रेष्ठ है, वो सब सुना था ना आपने, ज्ञानी को योगी कर, वो ट्रैक्स नंबर 46 45 था शायद, 46 या 45 छठे अध्याय में, सेकंड लास्ट वर्स छठे अध्याय का
46
राइट। क्या है श्लोक,
तपस्वी भ्यो अधिको योगी ज्ञानी भ्यो अपि मतो अधिक कर्म भीश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवति।
हाँ तो ज्ञानी फिर कर्म और योगी, तो ये तीनों से योगी श्रेष्ठ है, तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए योगी बनो। और योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो नित्य मुझ में परायण है, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर रहा है, वो योगी श्रेष्ठ है। तो यहाँ वो तो छठे अध्याय के एंड में ही भगवान ने इस बात को क्लियर कर दिया था, तो यहाँ पर भगवान इस आठवें अध्याय के अंतिम श्लोक में इस बात को फिर से दोहरा रहे कि भगवान के भक्त को कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मीन्स आप अगर भक्ति करते हो तो आपको कुछ अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन भक्ति पूर्ण रूप से शरणागति होनी चाहिए। अलग से भक्तों को कुछ नहीं, जैसे कर्म को देखा जाए तो देवर्षि नृणाम देवर्षि भूताप्त नाम पितृणाम न किंकरो नायम नहीं चराजन, जो भगवान का भक्त होता है वो उसको किसी को कर्जा देने की आवश्यकता नहीं रहती, अर्थात देवों के प्रति कर्जा होता है, राजा के प्रति कर्जा होता है, तो ये सारे नियमों से वो पर होता है, उसको उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भगवान की शरण में भगवान की सेवा में, इज अ प्रिंस, राजा का बेटा है, ही डजंट बॉदर अबाउट ऑल दैट। और उसको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान का जो चरम बिंदु है परमेश्वर, उनकी सेवा कर रहा है वो। इसलिए वो ज्ञानियों की तुलना में वो ज्ञानी उसके लिए तुच्छ है। तो इसलिए वो किसी चीज से, जैसे तपस्वी, उसको तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं अलग से। बड़े बड़े कुछ खाना बंद करना, चाहे बोलना बंद करना पड़ता है उसको, तपस्वी तपस्या तथा किम आराधते यदि हरिम तपसा तथा किम, नाराधते यदि हरिम तपसा तथा किम। अगर आप कृष्ण की आराधना, हरि की आराधना करते हो तो तपस्या की क्या आवश्यकता है? अगर आप हरि की आराधना नहीं करते हो तो आपकी तपस्या की वैल्यू क्या है? आराधते यदि हरिम तपसा तथा किम, नाराधते यदि हरिम तपसा तथा किम। इसलिए भगवान के भक्त को इस प्रकार के अलग अलग तपस्वियों, ये मार्गों की अलग से करने की आवश्यकता नहीं। नाउ जस्ट यू कैन रीड दिस लाइन फ्रॉम प्रभुपाद प्रपट, द वर्ड इदम विदित्वा इंडिकेट्स, इदम विदित्वा
उसे विद्वता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों की अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए।
भक्तों की संगति से श्रवण करके समझ सकते हो आप, और कोई तरीका नहीं है। कंटिन्यू
सातवें से लेकर बारहवें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप है। प्रथम छह अध्याय तथा अंतिम छह अध्याय इन मध्यवर्ती छह अध्यायों के लिए आवरण मात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन छह अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों के पार करके महिमा मिली हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल
मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये प्रभुपाद तात्पर्य में इस तरह से कहते हैं कि ये सार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहले जो छह अध्याय है और लास्ट के जो छह अध्याय, वो मिडिल छह अध्याय का कवरिंग है, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं। आप यही हमने आपको पहले एक बार बताया था। सो इसलिए ये मिडिल छह अध्याय जो है उसको अगर किसी भक्त की संगति में, भक्त के साथ बैठ करके अगर इसको सीखा जाए, जैसे प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ, आप सोचो कि प्रभुपाद के तात्पर्य नहीं होते तो इतने मिसअंडरस्टैंडिंग होती ये बीच के छह अध्याय में, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड विदाउट प्रभुपाद प्रपट। लेकिन उसका जीवन सफल हो जाता है अगर इस तरह से वो भक्तों के संग में ये समझता है। सो इस तरह से वी कंप्लीट चैप्टर 8, आठवें चैप्टर का हमें अभी संक्षिप्त में we completed that. Now आठवें अध्याय की जितने भी उदाहरण है, मैं आपको हर चैप्टर के अंत में उदाहरण का लिस्ट इसलिए दे रहा हूँ टेक्स्ट नंबर के साथ, ताकि आपको एग्जाम में काम आए।
जो पहले जो वो जो एक से नौ का जो पूरा क्वेश्चनरी और ब्लैंक फिलिंग जो ब्लैंक दिया है, तो उसमें से जो क्वेश्चन है उसी में से ही पूछने की पॉसिबिलिटी है?
मिक्स होता है सब, उसमें से आ सकता है, तात्पर्य से डायरेक्ट प्रश्न निकाले जाते हैं। एक्चुअली आपका जो बेस है वो केवल टेक्स्ट बुक है, और टेक्स्ट बुक मीन्स भगवद गीता फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा एक भी प्रश्न नहीं आता कि जो भगवद गीता के पेजेस के बाहर से आए। अगर कोई प्रश्न आपके सामने आता है तो पेपर इनवैलिड होता है, आप इनवैलिड नहीं होते हो। इसलिए भगवद गीता के तात्पर्य से प्रयास करो पढ़ने का। और वो जो बुक है ना जो आप बता रहे हो, वो तात्पर्य में से ही लिया गया है पूरा, प्रभुपाद के तात्पर्य में से। तो क्या क्या हो सकता है तात्पर्य में से, अनुवाद में से, फिर ये वक्षिल जो है तो वो सब मिला करके वक्षिल तात्पर्य से ही बनाया हुआ है, तो इसलिए उसके बाहर से कुछ प्रश्न हो सकता है, इसको ट्विस्ट किया जाए।
बस वही में प्रॉब्लम वही तात्पर्य को देखो, जो है वो सीधा समझ में आ जाता है और कह भी सकते हैं, समझ भी समझा भी सकते हैं, लेकिन उसको जो ट्विस्ट करके जो पूछते हैं तो वो अगर क्वेश्चन में अगर पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है तो वो इजी हो जाता है कि ये तो वही वाला है, इसका जवाब यही है, लेकिन अंदर से होता तो फिर कंफ्यूज हो जाता है।
यस, ट्विस्ट करने का अर्थ ही यही है कि आप उसको हर एक एंगल से देखो, ट्विस्ट का अर्थ यही है। ट्विस्ट करने से क्या होता है कि आप इसको किस तरह से समझिए, ये चेक करने के लिए ट्विस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भगवान ने कहा है कि भुंक्ते अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारण, भगवान ने कहा है कि जो खुद के लिए खाता है वो पाप खा रहा है, राइट? तो अभी ऐसा पूछा जाए, ये तो क्लियर है, लेकिन जो खुद के लिए नहीं खाता है, भगवान को ऑफर करके खाता है, वो क्या खाता है? तो उसको आप ढंग से समझे कि नहीं, वो तो इस तरह से अलग अलग एंगल से पूछा जाता है, हर एक पॉजिटिव बात को नेगेटिव बना करके फिर पूछा जाता है और नेगेटिव बात को पॉजिटिव बना करके पूछा जा सकता है, पूछने उत्तर एक ही आता है लेकिन उसको प्रस्तुत करने का तरीका अलग होता है। दैट्स इट, इस तरह से क्वेश्चन। हाँ, अभी आप भक्तों का बड़ा रिक्वेस्ट था, इसलिए हमने आपको स्टडी के लिए हम आपको एक वीक का टाइम देंगे, 1 वीक टाइम स्टडी, एक से चैप्टर 1 से खोलिए, देखो कौन है,
बोलो।
चैप्टर 1 से चैप्टर 9, 9 अध्याय है, कोई नहीं है ना। चैप्टर 1 से चैप्टर 9 के लिए अगर आपको पूरी भगवद गीता को एक बार पढ़ना है तात्पर्य के साथ और आपके क्वेश्चन असाइनमेंट्स के साथ, तो इसलिए आपको 7 दिन का समय एक्स्ट्रा देने का सोचा, बात किया हमने, तो 7 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको जस्ट स्टडी करने के लिए। वो 7 दिन में आप कुछ नहीं करना है, और आपके जो रूटीन काम है उसके अलावा जो भी समय मिलता है वो समय में आपको या रूटीन काम थोड़ा कम करके भी जो भी समय मिलता है उसमें भगवद गीता को पढ़ो। जैसे हमने आपको सैंपल के रूप में बताया था, चैप्टर समरी चेक करो, चैप्टर डिविजन्स जो बताया, ब्रेकडाउन जो है चैप्टर का उसको आपके सामने फ्रेम के आप रख दो कि सेकेंड चैप्टर के कितने पार्ट है, थर्ड चैप्टर के कितने पार्ट है, उसको आपके सामने रखो। फिर हर एक चैप्टर का असाइनमेंट्स जो है, वो असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस है उस तरीके से उस फ्रेमवर्क को भी चेक कर सकते हो आप डिविजन्स को, और फिर वो तात्पर्य जो भी महत्वपूर्ण तात्पर्य है वो तात्पर्य को पढ़ना है पूरा। कहीं सबका अपना अपना तरीका होता है, हम तो आपको एग्जांपल दे रहे हैं, सबका अपना तरीका होता है। आपको जिस तरीके से हमारे विष्णुराम प्रभु जब भक्ति शास्त्री कर रहे थे तो उस समय बहुत साल पहले तो पूछा था उनको, उनका हर बार टॉपर्स में आता था, उनका मार्क हमेशा 100 का वो 98, 97, 99 ऐसे ही आता था। तो उनको पूछा गया कि भाई आप क्या किस तरह से प्रिपेयर करते हो, आप प्रिपेयर किस तरह से करते हो, उनका तरीका कैसा? वो बोले मैं कुछ करता ही नहीं, मेरा तरीका एकदम सिंपल है, तात्पर्य के साथ टेक्स्ट नंबर 1 से टेक्स्ट नंबर एंड जो लास्ट टेक्स्ट उसको तात्पर्य के साथ पूरा पढ़ लेता हूँ गीता, दैट्स इट। वो एक बार पढ़ते हैं या फिर 2 बार पढ़ सकते हैं या 3 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन वो पूरा पढ़ते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कोई उसको कंठस्थ करने वाला सिस्टम या ऐसा कुछ नहीं, दैट इज हिज वे, ये उनका तरीका है। और कुछ भक्तों का तरीका है 4 भक्त ग्रुप में बैठ करके डिस्कस करते हैं, एक दूसरा तरीका है कि 4 भक्त, 2 भक्त, 3 भक्त, 4 भक्त आपस में बैठ करके डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है। और यहाँ पर भगवान ने फ्लो भी चेक करना चाहिए, फ्लो जानते हो ना, चैप्टर का फ्लो कैसे जा रहा है वो भी चेक करना चाहिए कि शुरुआत किस तरह से, दूसरा वो आगे चैप्टर किस तरह से फ्लो कर रहा है, किस कौन से प्रवाह से जा रहा है चैप्टर ऐसे। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर आपके पास और कोई तरीका है तो आप भक्तों को शेयर भी कर सकते हो। पढ़ने का, याद रखने का कुछ तरीका है। लेकिन याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना इम्पोर्टेंट है। याद तो चलो आप मेहनत करके रख भी लोगे लेकिन बाद में भूल जाओगे, लेकिन समझे हुए है तो उसको भूलना आसान नहीं होता। वो फिर उसका उपयोग नहीं करोगे तब भूलोगे। लेकिन अगर केवल आपने याद करने के लिए पढ़ा है तो क्या होगा, दूसरे तीसरे दिन तो साफ, जैसे एग्जाम में होता है ना मटेरियल, स्कूल कॉलेजेस के एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में, एग्जाम होने के पश्चात उस पुस्तक तो हाथ तक नहीं लगा, हाथ तक नहीं, बोले इसको क्यों छूने का आप, ये हो गया पूरा,
उपयोगिता खत्म हो गई।
हाँ, यूजलेस है वो, रद्दी में जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक स्टडी ऐसी नहीं होती, क्योंकि इसको तो जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार नई नई चीज सुनने प्राप्त होती है। हाँ, तो अगर आप इसी दृष्टि से पढ़ोगे कि मुझे याद करने के लिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स 98-97 लाने के लिए, या फिर रैंक लाने के लिए, या सर्टिफिकेट के लिए, क्यों इसलिए स्टडी करोगे, ये यथामान प्रपद्य बजामी हम जो जिस भाव से मेरे पास आता है, भगवान बोलते मैं उसको उसी भाव से रिस्पेक्ट उसी प्रकट करता हूँ। सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा लेकिन अंदर सारा खोखला रहेगा। कई बार अभी भी कुछ दिन पहले विष्णु को बोल रहे थे भाई, और कुछ लोग सर्टिफिकेट भक्ति शास्त्र का ले तो लिया, कोर्स पास भी कर लिया, लेकिन अंदर से पूरा खाली है, अंदर से पूरा खाली। क्यों? क्योंकि उनका जो तरीका था पढ़ने का, उन्होंने ये कोर्स को कुछ अलग ही दृष्टिकोण से पढ़ा था, इसलिए वो अपने लिए नहीं पढ़ रहे थे, वो सर्टिफिकेट के लिए पढ़ रहे थे। ठीक है, ये था मंत्र पर दिल्ली सिंपल, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा लेकिन आपका अपना कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है याद रखने से।
पास होने की तो गारंटी है,
पास होना तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है,
हो जाएंगे पास।
हाँ, इसको कोई तो कोई बड़ी बात है पास होना तो।
बड़ी छोटी नहीं पूछ रहा,
नहीं नहीं, कहने का तात्पर्य है
पास हो कि नहीं?
पास हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको रैंक लेना है,
रैंक नहीं चाहिए।
और जैसे टीटीसी वन में बोल रहे कि अगर आपने और आपके मतलब सर्टिफिकेट अगर फाट डाला ना तो ही प्रॉब्लम है, बाकी तो आप पास तो हो ही गए। ऐसा 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 कोई,
हाँ भक्ति शास्त्र में ऐसा है कि आपको मिनिमम मार्किंग जो है, मिनिमम पासिंग मार्क जो है, उसको आपको क्रॉस तो करना पड़ता है, नहीं तो आपको सेकंड अटेम्प्ट दिया जाता है। लेकिन उसको क्रॉसिंग पासिंग मार्क जो है उसको तो क्रॉस करना पड़ता है। और साथ में इसमें क्या होता है, ऐसे भी होता है ना ओपन बुक, केवल क्लोज बुक नहीं होता है, ओपन बुक भी होता है, तो ओपन बुक का भी वेटेज चेक किया जाता है, ओपन बुक का मार्क्स। और ओपन बुक में भी ऐसा नियम है कि अगर हमें पता पड़ गया कि ये किसी का कॉपी है, क्योंकि हमारे पास तो सबके पेपर होते आंसर, तो किसी का कॉपी है पता पड़ गया तो केवल 2 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है, फिर वो 2 साल के बाद फिर भक्ति शास्त्र कर सकता है, लेकिन 2 साल तक उसको सस्पेंड किया जाता है। लेकिन वो तो ऐसा कोई करेगा ही नहीं ना, कॉपी क्यों करेगा, अपने मन से सोचेगा ना, ऐसे अपने मन से लिखना है। और जैसे ऐसे के विषय में मैंने आपको पूरा बता दिया था कि कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, निजी एग्जाम्पल, स्वयं के एग्जाम्पल अधिक यूज करने हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। अगर आप बोलो कि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, एवरीवन इज एंड, अच्छा लाइक दैट, इस तरह से। हाँ मैं बताया नहीं, वो
संडे को अभी
19 वन वीक का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया,
19
मॉक टेस्ट 19
बाकी जो है वो एक्चुअली क्या था,
तो आपने 7 दिन सिर्फ बोला
मेरे,
ओके
आपने 7 दिन बोला मगर स्पेसिफिकली
डेट नहीं बोला था,
तो 19 को मॉक टेस्ट है और 76 को तो जो है वही ऐसे ही फाइनल
मॉक टेस्ट में क्या होगा,
मॉक टेस्ट मतलब भाई ये सेम मगर उसको जो प्रैक्टिस टेस्ट पूरा 100 मार्क्स का चैप्टर मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन मुझे कि मॉक टेस्ट आपने बताया था मॉक टेस्ट में अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फाइनल
एग्जाम सेकंड मॉक
तो एक वीक में सफिशियंट रूल चेक पेपर चेक करने सब कुछ करने में
हाँ सेकंड मॉक हो सकता है
और वो बता देंगे हमें कि हम दे पाएंगे या नहीं
यस एटलीस्ट वो आपको इतना बता देंगे कि यू क्लियर्ड और नॉट
हाँ भाई
मॉक क्लियर करना पड़ता है फाइनल में अपीयर होने के लिए एक्चुअली ये सिस्टम इसलिए बनाया है पहले नहीं था ये सिस्टम लेकिन ये सिस्टम में बाद से कुछ दो चार बैच से हमने बनाना शुरू किया क्योंकि मॉक टेस्ट में क्लियर होने के बाद एक कॉन्फिडेंस होता है कि अभी फाइनल में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक मॉक का वो मार्किंग भी हार्ड रखते हैं तो क्या होता है कि वो पूरा पता पड़ जाए कि क्लियर करेंगे कि नहीं
जैसे इंजीनियरिंग होता है या कोई भी होता है उसके अंदर पिछले पांच साल के पेपर्स क्लियर करते हैं उसके अंदर वो पेपर्स में से ही ज्यादातर उस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते
हैं हाँ तो मॉक में से कुछ प्रश्न रिपीट हो सकते हैं मॉक में समझ लो एक आध प्रश्न दो प्रश्न ऐसा कुछ हो सकता है कि जो आपके फाइनल में आ सकता है लेकिन कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि मॉक के इतने सारे हैं मॉक के पेपर सेट ही इतने सारे हैं आप समझे अगर 10 प्रकार के मॉक पेपर तैयार है अभी 10 में से कौन से मॉक आपको दिया जाता है इसका कोई गारंटी नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो आता रहता है हमेशा क्योंकि वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको तो पूछे जाते हैं वेल इट इज जस्ट असेसमेंट इट्स नॉट एग्जाम एग्जाम नहीं है असेसमेंट असेसमेंट का अर्थ होता है चेक करना कि आप कितना सीखे दैट्स इट
लेकिन सर रोल जी ऐसा है ना कि जो ताजा फ्रेश जो होता है जैसे कि मैंने बताया आपको कि दो चार श्लोक ही लेना है तो फ्रेश है तो और वही हमको कहना है तो उसके बारे में मानो कि हम बोले कि चलो प्रभुपाद जी ने जो बोला वही बोलना है बराबर तो वो इजीली बोल सकेंगे लेकिन ये पूरा होता है बंच तो उसमें से जो छोटी छोटी बातें होती है तो
इतना छोटा छोटा नहीं पूछते इतना छोटा नहीं पूछते कि टेक्स्ट चैप्टर 4 के टेक्स्ट नंबर 11 का परपट का सेकंड लाइन में प्रभुपाद क्या कहते हैं इतना डिटेलिंग नहीं पूछते कोई ओवरऑल पूछते जैसे फॉर एग्जांपल भगवान के अवतार के कारण भगवान अवतार क्यों लेते हैं तो ये तो ओवरऑल क्वेश्चन है चैप्टर 4 में से भगवान कहते यदा धर्मस्य और फिर तो ऐसे अलग अलग उसे 2-3 श्लोक है उसमें पूरा बताया है तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इतना माइनूट छोटी छोटी डिटेल नहीं पूछते ओवरऑल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसे आप बता रहे हो ना कि आप इसको प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ लिया और फिर इसको बताना बड़ा आसान है लेकिन इस स्टडी में एकेडमिक स्टडी में फायदा ये होता है कि उस तात्पर्य को पूरा स्क्रूटिनाइजली पढ़ा जाता है वो तात्पर्य जो है उसको अलग अलग डिविजन बनाया जाता है कि तात्पर्य का पहला पैराग्राफ में ये बताया है दूसरे पैराग्राफ में ये बताया है तीसरे पैराग्राफ में है उसका फ्लो इस तरह से है इसमें ये पॉइंट को हाईलाइट किया गया है ये स्ट्राइकिंग पॉइंट डाला गया है इस तरह से तात्पर्य को हम पढ़ते हैं इसलिए ये स्टडी जो होता है वो ज्यादा थॉटफुल स्टडी होता है ज्यादा उसको डीप में पढ़ा जाता है और जो हम रूटीन स्टडी करते हैं वो केवल क्योंकि उसमें कोई गाइडेंस नहीं होता इसलिए हम बुक की तरफ पढ़ लेते हैं जैसे बुक पढ़ते हैं वैसे पढ़ लेते हैं उसमें से जो हमारा सबसे कंफर्टेबल पॉइंट होता है हम उसको एक्सपांड कर देते हैं जिस पे हम बोल सकते हैं अधिक उसको एक्सपांड कर देते हैं लेकिन जो आइडियल प्रीचर होता है वो क्या करता है मैं किस पे ज्यादा बोल सकता हूँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन प्रभुपाद इस श्लोक में किस बात को ज्यादा महत्व दे रहे हैं उसको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ इस तरह से बताना चाहिए उसको परंपरा बोलते हैं ना प्रभुपाद जो बताना चाहते हैं उसको हमें बता उसको परंपरा बोलते हैं सो मैं उसका एग्जांपल समरी बता दूं इसमें ज्यादा है भी नहीं बाद में फिर ये काम आप खुद भी कर सकते हो आफ्टर 9 चैप्टर सेकंड मॉड्यूल में ये आप खुद भी कर सकते हो ये आपका वर्कशीट में भी होगा कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो श्लोक में या परपट में आपको एग्जाम्पल मिल गया नोट कर दो साइड में कि टेक्स्ट नंबर ये एग्जाम्पल ये टेक्स्ट नंबर 2 इसमें हंस का उदाहरण है कुलशेखर महाराज वाला प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तौ कृष्ण त्वदीय पद पंकज ये श्लोक मुकुंदमाला सूत्र में से। टेक्स्ट नंबर 8 कैटरपिलर का एग्जांपल है। कैटरपिलर को क्या बोल देंगे? कीड़ा, एक कीड़ा होगा, रेशम का कीड़ा।
हाँ,
रेशम का कीड़ा। एक पर्टिकुलर कीड़ा होता है वो जिसमें से बटरफ्लाई बनता है। ये 8 में है, 8.8 में। आप तात्पर्य में प्रॉपर ने लिखा है वो, आप भगवद गीता में देख सकते हो, गुजराती शब्द एग्जैक्ट। आई थिंक वो कीड़ा शब्द यूज हुआ है इसमें भी, गुजराती में। उसमें से फिर वो पतंग का बनता है, पतंगिया, क्या बोलते हैं, पतंगियो बना। फिर टेक्स्ट नंबर 17 फ्लैश लाइट एंड बबल्स। ये ब्रह्मा जी का लाइफ जो है ना वो बबल जैसा। बबल कितना रहता है, उसका लाइफ कितना होता है बबल का? कुछ नहीं। टेक्स्ट नंबर 22 वृक्ष का एग्जांपल, ट्री, वृक्ष। ओके,